Thank you. Hari Ram, 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 वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं त्रिजे भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दे सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद और स्वतः श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ और तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ। हम लोग सनातन धर्म के संबंध में दो दिनों तक बतलाया व्याख्या की और सनातन धर्म के विशेष संबंध में हम लोग कुछ और बतलाने जा रहे हैं। कल हमने प्रहलाद महाराज जी की बात बतलाई, भक्तों में एक ज्ञानी भक्त होता है। तो ज्ञानी लोग दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी है जो परब्रह्म का कोई आकार नहीं मानता, अव्यक्त मानता है, निर्गुण मानता है और ब्रह्म में लय सायुज्य चाहता है, ये लोग ज्ञानी कहलाते हैं। और एक ज्ञानी भक्त होते हैं वो दूसरे प्रकार के। सुखदेव गोस्वामी जी, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार कुमार, ये लोग ज्ञानी भक्त में आते हैं। ये लोग ईश्वर में मिलना नहीं चाहते हैं, ब्रह्म में भक्त लोग ये हैं। तब इनकी धारणा ऐसी होती है कि हमारा जो ब्रह्म है वो सब प्रकार से परिपूर्ण है, वो थकता नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सबका माता पिता है, सृष्टि का आदि है, बस उसका स्मरण करते हैं। किसी को भूख प्यास होती है तब तो उसकी सेवा होगी, थकता है तो पैर दबाना है, भूख लगेगी तो रसोई बनाए। तो जिस ब्रह्म में भूख नहीं लगती, सर्वव्याप्त है, उसको क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, प्रभु आप हमारा कल्याण कीजिए, बस इतना है। प्रहलाद महाराज जी स्मरण करते थे, विषम पितामह जी पांडवों से लड़े किंतु फिर भी ज्ञानी भक्त थे। कृष्ण की इच्छा से पांडवों की के विपक्ष में लड़े किंतु पांडवों की सब समय जय चाहते थे, पांडवों की जय हो। जब महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन ने तीन बाण लिए, पहले बाण से उठाया और फूल के समान उसे ऐसा छोड़ा, भीष्म पितामह के चरणों में जाकर के वो गिरा। कुछ लगा नहीं, खनोज भी नहीं आई। विषम पतामा ने कहा जो तुम्हारी विजय हो, आशीर्वाद दे दिया, यदि ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी विजय नहीं होती, अब तुम्हारी विजय जरूरत। और दूसरा द्रोणाचार्य को प्रणाम किया बाणों से, उन्होंने तुम्हारी विजय हो, अब ध्रुव निश्चित तुम्हारी विजय हो। जहां कृष्ण है वहां पर धर्म है, और जहां धर्म है वहां पर विजय हो, जहां धर्म नहीं है वहां भगवान नहीं रहते, उसकी विजय नहीं है। तो तुम लोग धर्म के पक्ष में हो, इसलिए कृष्ण तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी जय। और तीसरा छोड़ा तो कृपाचार्य को, उनको प्रणाम। विषम पितामह जी कैसे हैं, भक्त हैं, सुनेंगे। महाभारत का युद्ध हो रहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी हम रोज 10,000 महारथियों को मारेंगे, लाखों लोगों को मारेंगे। अब पांडव लोग घबराए, किंतु कृष्ण उधर हैं, पांडवों में किसी को भी नहीं मार सके भीष्म पितामह। तो गया भीष्म पितामह के पास में और बोला जे प्रणाम पितामह, आप इतना तो सब कर रहे हैं, पांडवों में से किसी को एक तनिक भी बाण नहीं लगा, आप लोग उनका कुछ नहीं कर सके। अरे हम पर संदेह मत करो, हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, पांडवों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो सब जो कोई मार देगा, हम मार देंगे जल्दी से। तो अर्जुन मार देगा सबको, अर्जुन बचा रहा तो ठीक है, ऐसा बात करो कल रात में 12 बजे के करीब अपनी पत्नी को साथ में ले आना, भानुमती, मैं आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती माने पति न मरे, बस तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो दुर्योधन अपनी पत्नी से कह करके रखा जे कल रात में 12 बजे चलना है भीष्म पितामह जी के खेमे में, शिविर में। ठीक, सब कुछ तैयारी हो गई और इधर शाम से वर्षा घना घोर आरंभ हुई, वर्षा बिजली कड़क रही, इतनी जोर से वर्षा कड़क कड़कने लगी बिजली, दुर्योधन ने कहा जी आप कल चलेंगे, आज रहेंगे, आज रहने दो, आज वर्षा हो रही है, कहीं कोई कुछ हो जाए कल चले। और कृष्ण ने कहा द्रौपदी को, सखी अभी भीष्म पितामह के पास में आज रात में 12 बजे चलना है और वर्षा हो रही, छाता निकाल करके उसको रथ में बैठा लिया और रथ को हाँक करके भीष्म पितामह के शिविर के पास में ले गए और उसको उतारा और छत्री में लेकर के उनके शिविर के भीतर कर दिया। भीष्म पितामह जानते थे जब दुर्योधन आएगा अपनी पत्नी के साथ में तो ध्यान में बैठे थे, कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, प्रभु का कृष्ण ही उनके आराध्य। इधर में द्रौपदी जाकर के घूंघट निकाल करके और पास में बैठ गई, प्रतीक्षा करने लगी कि जब उठेंगे तो बात करेंगे। तो उनको कुछ आहट सी हुई और द्रौपदी जी घूंघट का करते उनके सामने खड़ी थी। भीष्म पितामह जी ने हाथ खोला, अरे तू आ गई भानुमती, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्य माने तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकेगा, नहीं मार सकेगा तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। द्रौपदी ने घूंघट उठा दिया, देखकर के भीष्म पितामह जी मुस्कुराए, अरे द्रौपदी तुम कैसे आए, तुमको कौन साथ में ले आया, कोई जरूर लाने वाला है, कौन है? तो वो बाहर में खड़े हैं, जाकर के भीष्म देखा तो कृष्ण खड़े हैं, उनको प्रणाम किया, प्रभु आपकी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं चलती, आपने द्रौपदी को ला करके वो वर दिया, दिलवा दिया जो मैं उसको देना चाहता, अच्छा आपकी इच्छा हुई। तो ऐसे भीष्म पितामह जी थे, भक्त थे, किंतु बाणों से कृष्ण का शरीर जर्जर कर दिया पांडवों का, आरों का। वो समझते थे कि ये तो प्रभु भगवान है, इनको बाण थोड़े लगेगा, विष खाने से विष भी नहीं होता असर, तो बाण उनको क्या लगा, उनका तो चिन्मय शरीर है। जीव गोस्वामी ने लिखा भीष्म पितामह जी को उस समय में असुर ने
असुर प्रवेश कर दिया था,
उनके शरीर को आच्छादित कर दिया। भगवान के शरीर में कोई बाण मारेगा? अच्छा, किंतु असुर ने प्रवेश कर देखा, तभी वो भीष्म पितामह जी ज्ञानी पद सनक सनंदन सनातन अपने प्रथम जीवन में सुखदेव गोस्वामी भी ज्ञानी भक्त थे। व्यास की कृपा से सुखदेव गोस्वामी परम भक्त रसिक भक्त हुए और ब्रह्मा जी की कृपा से उनके पुत्र सनक सनंदन सनातन भी भक्त अच्छे से। ये लोग ज्ञानी भक्त, ज्ञानी होना मत, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी होना ठीक नहीं है, नहीं तो भगवान उसकी बुद्धि को पत्थर के समान में जड़ कर देते हैं, उसको कुछ अनुभूति नहीं होता, समझता है कि हम ब्रह्म में लीन हो गए। अब प्रहलाद महाराज के ब्रह्म को भूख नहीं लगती, नृसिंह देव को खिलाया कुछ कि नहीं? नहीं खिलाया, उनको कुछ दिया? दिया भी नहीं, उनकी गोदी में बैठ गए जैसे बाप की गोदी में कोई बैठ जाता है, उनके पालक हैं सब हैं। देखो भगवान को पितामह बनाना, पितामह मानना, उनको बेटा मानना, सखा मानना, प्रियतम मानना। यदि पिता माने भी या माने हुए तो पिता पुत्र की सेवा करता है बचपन से, तो वही तुम्हारी सेवा करेंगे, तो तुमको सेवा का अवकाश मिला नहीं तो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं, इसको भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं। क्रिश्चियन लोग पिता की अपने हाँ उनको पिता मानते हैं, फादर मानते हैं। गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर, हमको मक्खन और रोटी दो, ये कहते हैं। बेटा मान करके, सखा मान करके, प्रियतम मान करके भजन करेंगे, सेवा करेंगे, ये नहीं, भारतीय संस्कृति के अलावा कभी नहीं है, किसी भी धर्म संप्रदाय में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए हम और सब लोग उनको फादर पिता मानते हैं, हम लोग पिता हैं, उनको पुत्र मान करके बचपन से ही हम उनकी सेवा करेंगे, जैसे नंद बाबा आदि से होगा। प्रहलाद महाराज जी के कोई सेवा तो कर नहीं सके, मणि मन में स्मरण करते हैं दिन रात, महाभागवत हैं, सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं, समस्त जीवों के हृदय में तो अपने प्रभु को देखते हैं और प्रभु में सब जीवों को देखते हैं, दोनों बात ऐसे समझो। प्रहलाद महाराज परम महाभागवत हैं, परम भक्त हैं, सबके हृदय में अपने प्रभु को देखते हैं और यहां तक कि पत्थर तक में भी, पेड़ पौधे समस्त उनके अंदर में अपने प्रभु को देखते हैं और अपने प्रभु में सब को देखते हैं, सब जीव मात्र को देखते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज जी सबके वंदनीय हैं, उनकी शिक्षाएं श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। बचपन से भजन करो, बूढ़ा हो जाने पर भजन नहीं होगा और इसी बीच में मृत्यु हो जाएगी तो भी भजन नहीं होगा, इसलिए बचपन से या जब ही साधु संघ मिल गया तभी से भजन करना आरंभ कर दो। बचपन में बुद्धि कोड़ी होती है, जो कुछ पढ़ाया जाएगा सीख जाएगा और नहीं तो पीछे 50-60 वर्ष के बाद में बुद्धि एक दूसरी तरफ में चली जाती है, वो फिर जितना पढ़ाओ वो नहीं पढ़ता, बचपन से पढ़ता। दुख बिना बुलाया आता है, सुख भी आएगा, उसके लिए चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस तरह से उन्होंने बालकों को, असुर बालकों को शिक्षा। अब इससे बड़ा और एक भक्त है, पहला हुआ ज्ञानी भक्त, ध्रुव की भक्ति भक्ति नहीं है, वो सकाम भक्ति है। भगवान की सकाम भक्ति मत करो, प्रभु के प्रीति के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए जो कुछ करेगा वही भक्ति है। एक आदमी रसोई बना करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए दे रहा है, वो भक्ति है। जो कुछ भी है, लौकी की वैदिक की वाक ज्ञा क्रिया की यति मुने हरि सेवानुकुल्ये न साकाद्या भक्ति विच्छता। जो कुछ भी करो, यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हो, कृष्ण की प्रीति के लिए, तो लौकिक की हो वैदिक की हो कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया को भक्ति करते हैं। अब पहले हुए ज्ञानी भक्त, ध्रुव की भक्ति सकाम है, इनकी भक्ति सकाम नहीं है, शुद्ध भक्ति है, किंतु सेवा का विकास नहीं है। जो सेवा करनी चाहिए सेवा का विकास, इससे शुद्ध भक्त श्रेष्ठ है। अम्बरीश महाराज, कैसे अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ है? उनकी राजधानी थी मध्य प्रदेश में, जहां उज्जैनी में, किंतु उज्जैनी में कम रहते थे ब्रजमंडल में, मधुबन में। उस समय में नगर नहीं बसा था मथुरा को, जमुना के किनारे मधुबन कहलाता था, उसमें वो रहते। वहां पर एक राजधानी बना ली थी और करते क्या थे, महाभागवत थे, राज्य का संचालन करते थे। अपने नहीं, वशिष्ठ गौतम हारी बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो अनुभवी हैं, वो लोग राज्य का संचालन उनके ऊपर नहीं छोड़ दिया। और बड़े बड़े यज्ञ होते थे, राजसूय अश्वमेध इत्यादि यज्ञ वो पुरोहितों के द्वारा करा लेते थे, खुद नहीं करते। और खजाना इत्यादि का भार भी उन ऋषियों के ऊपर ने सौंप दिया था। और अपने क्या करते थे, ऊपर से देखते थे राज्य भार, किंतु अपने आप मंदिर में झाड़ू लगाते, मंदिर को धोते, हरि कथा कानों से सुनते, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते अपने अंगों से, मन से भगवान की कथा का चिंतन करते, लीलाओं का चिंतन करते, हाथ से ठाकुर जी का अर्चन और सब सेवा, पैरों से क्या करते, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते, धाम के जहां पर कृष्ण का जन्म और लीला हुआ उस समय वृंदावन में, उसके 12 वन है, 12 उपवन है, सत्य प्रभु परिक्रमा करते, जैसे हम लोग करते हैं कार्तिक के महीने में करते हैं, कभी आओ तो दर्शन कर सकते। तो परिक्रमा करते थे, समस्त 11 इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगा रखा। साधु संतों का उनके राज्य में सर्वत्र बड़ा आदर था, उनकी सेवा में निजुक्त कर रखे थे, द्वादशी एकादशी का पालन करते थे और सबको शिक्षा देते थे कि तुम लोग भी भगवान का भजन करो और एकादशी का व्रत करो। एक बार महाद्वादशी आई, यदि एकादशी रहे या फिर द्वादशी आए तो द्वादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी को छोड़ देना चाहिए, उसमें द्वादशी में आ जाता है। और इधर दुर्वासा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध महात्मा कहीं भी चले जाते थे, मन की गति से आकाश में भी उड़ सकते थे और सब त्रिलोकी में जहां स्वर्ग तक सब जगह घूम सकते थे, जिसको जो कह देंगे वही हो जाए। तो द्वादशी के दूसरे दिन में पारण का समय होता है, तो पारण करने के लिए केवल 10 मिनट का समय, एक मुहूर्त का समय, 24 मिनट का समय था, किंतु वो भी बीत रहा था। उसके पहले ठाकुर जी की पूजा करके, वैष्णवों को भोजन दे करके, अतिथियों को भोजन दे करके भोजन करना होता है, ठाकुर जी का होता है। तो वो प्रसाद तैयार था, भोग लगाया, सबको वितरण करके लेंगे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। इन्होंने कहा आज बड़ा हमारा सौभाग्य है, द्वादशी का दिन है, आपको भोजन करा करके हम भोजन करेंगे। जे ठीक है, तो मैं स्नान जमुना में करने जा रहा हूं, प्रतीक्षा करो, मैं अभी आ रहा हूं। और समय बीतने लगा, वो चले गए और ध्यान में लगाया, ध्यान करने लगे, और मिनट 2-3 का रह गया। अम्बरीश ने ब्राह्मण से पूछा क्या करना चाहिए, यदि ब्राह्मण को हम खिला करके पाएंगे हमारी एकादशी व्रत नष्ट हो जाए, और यदि ब्राह्मण को नहीं खिला करके खाते हैं तो उसको निमंत्रण दिया है और अभिसंपात देने से हमारा राज्य इत्यादि सभी कुछ भ्रष्ट हो सकता है, या मुझे भी जला करके खाक कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ब्राह्मण नहीं समझे, उन्होंने फिर निश्चित किया, वशिष्ठ इत्यादि होंगे, उन्होंने परामर्श दिया होगा, आप एक बात कीजिए, आपने निर्जला उपवास किया है एकादशी का, पानी तक नहीं लिया, इसलिए आज के दिन ठाकुर जी का चरणामृत जो अभी पूजा हो गई है, चरणामृत में से थोड़ा सा एक बूंद जल धूप में दे दीजिए, आपका पारण हो जाएगा, फिर आएंगे उनको प्रसाद दे करके फिर पाएंगे। उन्होंने एक बूंद चरणामृत मुख में दिया और इतने में ऋषि आ गए। अरे तू महाअभिमानी दाम्भी, हमको निमंत्रण करके और तुम पहले ही पारण कर लिया। बड़े बिगड़े जोर से, क्रोध के अवतार हैं शंकर जी, के अवतार हैं शंकर जी का क्रोध दुर्भाषा जी है। उन्होंने जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ करके वो जटा जलने लगी और उसको छोड़ा, जाओ उसे जला दो, जला करके खत्म करो। वो राक्षसी आग बन करके उनको जलाने के लिए से महाराज अम्बरीश चुपचाप खड़े थे। भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं आता, मृत्यु का भी, वो भगवान के आश्रय शरणागत होते हैं। जब वो कृत्या गई उनको जलाने के लिए, इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन प्रतीक्षा कर रहा था रक्षा, वो झट आकर के कृत्या को जला करके और दुर्भाषा के पीछे दौड़ा। और दुर्भाषा ऋषि क्या हुए, भरे डर के मारे मृत्यु से, अम्बरीश महाराज नहीं भरे, और ये ब्रह्म ज्ञानी हो करके और इतना तपस्या का बल मृत्यु के भय से भागे और चक्र उनको पीछे चला, शिवलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी दूर हटो, हमारे पास मत आओ, तू भक्तों का द्रोही है, हम तुमको रक्षा नहीं करेंगे, नहीं तो तुम चक्र सुदर्शन हमें जला देगा। शंकर के पास में गए, उन्होंने भी उसको जल्दी से जल्दी यहां से भागो, नहीं तो हमको भी चक्र सुदर्शन जला दे। और वो जलते हुए वहां से फिर भागे तो नारायण लोक में गए, विष्णु लोक में। हे त्राण विष्णु, आप रक्षा कीजिए। भगवान बोले देखो, तुमने भक्तों के चरणों में अपराध किया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। यदि कांटा पैर में गड़ता है तो पैर से ही निकालो, मैं पराधी हूं, मैंने अपना हृदय अपने भक्तों को दे दिया है, और भक्तों का हृदय मैं हूं और उनका हृदय मैं हूं। जिन लोगों ने हमारे लिए मेरे लिए स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, सब कुछ छोड़ दी है मेरे लिए, मैं उनको छोड़ सकता हूं? भगवान के लिए जो सब कुछ छोड़ सकता है, भगवान उनको नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान भक्तों के पराधीन होते हैं, और जो भक्त जितना ही ऊंचा होगा उसके वधीन। अब समझ लो कि सब भक्तों में सबसे बड़ा उन्नत, सबसे बड़ा कौन भक्त है? गोपियां और गोपियों में भी राधिका जी उनके हृदय में सबसे में। जैसा कहीं उठो उठे, बैठो बैठे, उनके बसी तो ये भी कम नहीं थे। मैं क्षमा नहीं कर सकता, जाओ तुमको एक परामर्श देता हूं। अच्छी, हमारे भक्त लोग बड़े शांत होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, तुम उनके पास में जाओ और उनसे क्षमा मांगो, बच जाएगा, नहीं तो सुदर्शन नबी छोड़ नहीं सकता, हमारी आज्ञा ही उसको ऐसी है। किंतु अब तक जलाया क्यों नहीं था? सुदर्शन तो दुर्वासा की गति से तेज दौड़ने वाले हैं, इसलिए कि अम्बरीश महाराज प्रार्थना के प्रभु उसको जलाइए, इसलिए वो जला नहीं रहा था उनके प्रार्थना से। अब वो जल्दी से दौड़ करके फिर लौटे। एक वर्ष पूरा लग गया और महाराज अम्बरीश उसी तरह से हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जो प्रभु इस ब्राह्मण का कोई अनिष्ट न हो। जब आए तो उनके चरण में गिर पड़े और ऋषि ब्रह्मर्षि, क्या नाम, दुर्वासा गिर पड़े, उन्होंने झट उनको उठा लिया और उनके चरणों में ये गिरने लगे, हमारा दोष हो गया, अपराध हो गया, आप क्षमा की। और कहते हैं, ओ आज अहो अनंत दासा नाम महत्तम अद्यम दृष्ट में हो, आज भक्तों का इतना महान चरित्र है, आज मैं महत्व समझा रही भक्त को कैसे, मैं ब्रह्म ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था। ब्रह्म ज्ञान हमको है, ब्रह्म तेज हमारे अंदर में है, सब कुछ फीका पड़ गया, इसलिए आज भक्त ने देखा क्या मैं आया क्षमा मांगने के लिए, तो वही क्षमा मांगने लगा। प्रभु एक वर्ष तक आपको बड़ा कष्ट हुआ, फिर उन्होंने स्तव स्तुति की दुर्वासा ने, और फिर उन्होंने उनके लिए प्रसाद फिर से बनाया, प्रसाद पाए, फिर उनको संतुष्ट करके तब फिर परिवार के सहित में अपना प्रसाद आया। अम्बरीश महाराज जी ऐसे तन से मन से वचन से सब क्रियाओं से भगवान की सेवा है।
बोले श्री वृंदावन के हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे कन्हैया। फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ हमारी बाल जी बजा जा।
सेवा करते हैं, तन से, मन से, वचन से, साक्षात सेवा। अंबरीश महाराज जी शिव विग्रह की सेवा करते थे और हनुमान जी क्या करते हैं, साक्षात राम। शादी विवाह किया कुछ नहीं, बाल ब्रह्मचारी और तभी से उनकी सेवा में लगे हैं। कैसी सेवा करते हैं, रोम रोम से भी सेवा करते हैं। किष्किंधा में हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी हैं कौन, साक्षात शंकर जी हैं, उनकी सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में आए। वृंदावन में शंकर जी गोपीश्वर बन करके उनकी सेवा करते हैं, गोपी बन करके, और राम की सेवा करते हैं हनुमान बन करके। किष्किंधा में पहली बार मिले, सुग्रीव जी डर रहे थे, ये तीन दो भाई आ रहे हैं कौन है, हाथ में धनुष बाण लेकर के इधर आ रहे, जाओ पता लगाओ। हनुमान जी ने मनुष्य का रूप, ब्राह्मण का मनुष्य रूप बनाया, उनके पास में गए थोड़े से शब्दों में और सार बातें उनसे की। भगवान ने कहा, जे तुम तो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण रूप में, सार रूप में, थोड़े शब्दों में अपने समस्त भावों को विकास करना, बोलना, ये पांडित्य है। कम बोले, थोड़ा बोले, किंतु सार बोले, उसमें सभी कुछ आ जाए। हनुमान जी इसी प्रकार से ब्राह्मण के रूप में बड़ी नम्रता के साथ में राम से बातचीत किया। जब बात किया तो समझ गए, अरे ये तो साधारण नहीं, ये तो हमारे इष्ट देव हैं। सुग्रीव पर कृपा कराना चाहते थे, उनकी सेवा कराने के लिए, तो उसे अपने कंधे पर ले गए। आकाश मार्ग में उड़ करके पहाड़ के ऊपर में गए, जहां पर कि कोई नहीं जा सकता। उनसे मिताली कराई और फिर सीता जी की चोरी हुई तो उसमें पता लगाने के लिए कौन गया? हनुमान जी खुद गए। राम का आदेश नहीं था, नहीं तो लंका का दहन कर दिया, जला करके खा कर दिया। सीता जी को बोले, भैया तुम्हारे पीठ पर चढ़ जा, मैं अभी आज एक मिनट में अभी राम के पास नहीं पहुंचा। बेटा ऐसा मत करो, मैंने जानबूझ करके रावण को नहीं स्पर्श किया, मैं राम को अतिरिक्त और किसी का स्पर्श नहीं करती, केवल राम का स्पर्श करती हूं। मैं लाचार थी इसलिए हमारे शरीर को छुआ, किंतु अब नहीं। अब रामचंद्र खुद आए हमारे पति और रावण का ध्वंस करके और हमको जीत करके ले जाए, मैं तब तक किसी प्रकार से बची गई। कैसे बची थी? अनुसुईया जी का व्रत था, उनको कपड़े दिए थे जो कभी मलिन नहीं होंगे, और कुछ पाउडर जैसा दिया था, कभी उनका रंग फीका नहीं पड़ेगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा, इसलिए उनको कुछ नहीं होगा। और वैसे तो ये लक्ष्मी जी हैं, इसलिए रही, जब जब जरूरत पड़ी हनुमान ने सेवा की। जब लंका विजय हो गया, राम के साथ में आए, भरत जी को बताने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आए, उनसे बतलाया, चित्रकूट में दोनों का मिलन हुआ, पहाड़ पर्वत गल गया। फिर जबकि राज्याभिषेक हो गया तो रामचंद्र जी सबको कुछ पुरस्कार दे रहे, जो जैसा है उसको वैसा पुरस्कार देने लगे। सबको पुरस्कार देने के बाद में राम ने सीता जी के तरफ में देखा, बोला मैं, मेरे पास में कुछ ऐसा नहीं है कि रील्स का उतारू हनुमान का, तुम कुछ दो, हमारे पास कुछ नहीं। तो उनके पास में एक हार था, वो हार निकाल करके और उसके गले में, हनुमान जी के गले में पहना दिया। हनुमान जी इधर उधर देखने लगे और दांत से, बंदर तो है ही है, दांत से काटा और उसको तोड़ दिया, देखा फेंक दिया। करते 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 दो चार आ गए, बाकी सबको तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। राम बोले जी से, भाई ये सीता जी ने तुमको हार दिया इतना प्यारा और तुम इसे तोड़ फोड़ करके फेंक रहे हो, क्यों? इसमें देखता हूं कि इसमें राम नाम है कि नहीं, तो किसी में तो राम नाम नहीं देखा, इसलिए किस चीज की जरूरत है फेंक दिया। तो तुम्हारे हृदय में है, बस नथ लगाया और फाड़ दिया, रोम रोम में राम राम। ऐसे ये भक्त हैं। एक समय सीता जी स्नान कर रही थी, बाथरूम में थी और स्नान करने के बाद में सिंदूर लगाने लगी। इतने में हनुमान उनका तो बेटा जैसा वहां पर उपस्थित हो गया, पता जी मैया ये क्या कर रही? तो मैं सौभाग्य का चिन्ह लगा रही हूं, इसके लगाने से तुम्हारे पिता, हमारे पति चिरजीवित रहे हैं। इसलिए लगा रहे, ओ इसलिए राम जीवित रहेंगे। ठीक, जब सीता निकल करके चली गई सभा में, कौन बर घुस गया उस श्रृंगार सदन में और तेल पूरा ले लिया, जितना सिंदूर था एक साथ में तेल में मिला दिया और अपने सारे अंगों में लगा दिया। देखा जाता है हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाते हैं और तेल उसी समय से चढ़ा, ऐसा लगा करके राम की सभा में गए तो सब लोग हंसने लगे। राम ने कहा जी अरे तुमने ये क्या किया, क्यों किया? तो मैया ने यहां पर लगाया, केवल यहां लगाने से आप चिर जीवित रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो मैंने सारे शरीर में लगा दिया जिससे आप सुखी रहे। जब जब भीड़ पड़ी, जबकि नाग पास में बंधे, तो गरुड़ को हनुमान जी छड़ में लगे, लक्ष्मण जी को शैल शक्ति लगी, मेघनाद ने मारा, मूर्छित हो गए, सवेरे होते ही मर जाएंगे, थोड़ा समय था, उड़ करके कहां गए, हिमाचल में संजीवनी बूटी लाने के लिए, और रावण ने माया करके सब वो पर्वत पर जहां जड़ी बूटी रहती है वो जलती है तो वो सब जगह जला दिया। समझ नहीं सके ये कौन सी वो संजीवनी बूटी है, पर्वत को ही उखाड़ दिया और उखाड़ करके, और रास्ते में उनको बाधा देने के लिए कोई राक्षस था
काल में
उसको वहीं पर मारा, और मार करके पर्वत को लेकर के आ रहे थे अयोध्या के करीब में आए तो शब्द हुआ पहाड़ जा रहा है, हाथ पर लेकर भरती ने देखा ये क्या, उन्होंने बाण मारा, एक घास लिया तीन का और बाण मारा तो पर्वत के सहित हनुमान जी नीचे आ गए और आते आते बोले जय राम राम राम। अरे मैंने किसको मारा, कौन है? हनुमान जी मूर्छित थे, फिर उठाया, हनुमान जी ने बतलाया जो युद्ध हो रहा है वहां
लंका,
हाँ, और वहां पर ले जाना जरूरी नहीं, तो लक्ष्मण जी को सेल लगी है, बड़े अफसोस करने लगे भरत। भरत जी कम नहीं है भगवान से, राम से, उनके समान प्रेमी जगत में कोई नहीं, यदि भरत नहीं आते तो भक्ति किसको कहते हैं, ये नहीं चलता, इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ी उनकी तो हनुमान जी को कहा जैसे तुम अभी हमारे बाण पर बैठ जाओ, अभी एक सेकंड में पहुंच जाओगे, कल मैं जानता हूं आप ऐसे भी हैं किंतु मैं स्वयं चला जाऊंगा, बस पूरे अच्छे स्वयं जी ने लाया गया, सुसेन वैद्य का घर ही उखाड़ करके ले आए उसको, और फिर सवेरे होने के पहले ही उनको लगाने से वो महिलाओं ने राम और राम और लक्ष्मण को चोरी करके वहां से ले गया और दुर्गा को पाताल में बलि देगा, हनुमान जी पहुंच गए और वहां पर उनका बेटा मकरध्वज पसीने से जो समुद्र में कूदे थे, पसीना एक मछली खा गई, उसे एक बेटा हुआ वो बंदर बड़ा बलवान, वहां पर कहते हैं कि वो इंग्लैंड था, तो वहां पर जाकर के और पहुंचे, जब बलि देने के लिए हाथ उठाया लोगों ने तो वंश के सहित सबको हनुमान जी ने लेकर के अग्नि में आहुत दे करके और राम को और लक्ष्मण को बिठा कर सारा जीवन उनकी सेवा की। और जब राम परलोक को जाने लगे अयोध्या वासियों को लेकर के गोपतार घाट से, हनुमान जी को कहा जो तुम मत आना हमारे साथ में, साकेत तुम ही जगत में रहना और हमारी कथा का प्रचार करना, तुम चली जाएगी चला जाएगा हमारा कथा का प्रचार नहीं होगा, इसलिए हनुमान जी जहां पर हरि कथा होगी राम की कथा होगी मैं समझता कि जरूर हनुमान जी कहीं न कहीं आए होंगे किसी न किसी, यहां तक कि कोढ़ी का रूप धारण कर लेते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं और हरि कथा हो जाने के बाद में सबसे अंत में जाते। तुलसीदास जी को भी इसी तरह से मिले थे, हनुमान जी की कृपा से ही तुलसी को भगवान का दर्शन हुआ। क्या कि घाट चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से राम और लक्ष्मण घोड़े पर चढ़ करके आए थे, स्नान किया और स्नान करके तुलसीदास के पास में आए, जो तिलक हमको लगा दो। उन्होंने समझा नहीं तिलक लगा रहे थे, अब तो चले जाते। अरे वही है, कौन है? देखो तिलक दे, तब उनको याद आई और फिर भगवान का दर्शन, हनुमान की कृपा से ही राम के दर्शन। बड़े दयालु, यदि उनका नाम ले तो भूत पिशाच निकट नहीं आते, और भक्ति को देने वाले हैं राम की भक्ति। ऐसे तो ये है, किंतु भाई एक बात है, ये प्रेमी भक्त है, भगवान के प्रेमात्म प्रेम पर भक्त है। और देश जब कृष्ण आए, कृष्ण के रूप में और लीला कर रहे थे, महाभारत युद्ध होने को है, कृष्ण अर्जुन के साथी बने, और क्या हुआ, अपनी बहन की शादी किसे किया, अर्जुन के साथ। उन्हें बड़ी रोचक कथा है, कल कहेंगे। तो हनुमान अर्जुन के साथ ही बने, उनके घोड़ों को धोते थे, कौन, अर्जुन नहीं धोता था, कृष्ण धोते थे। और अर्जुन कहते जब बीच में रख ले चलो, तो नौकर की भांति बीच में ले जाते थे, जो कहते थे। अब तक हनुमान जी के तो प्रभु हैं, और यहां क्या पांडवों के क्या बन गए, उनके साथी बन गए, घोड़े देने वाले बन गए, और मित्र बन गए, सखा बन गए, उनके रक्षक पहरेदार बन गए, ऐसे भक्ति के वश में हैं। ऐसे भक्त कौन है, पांडव, और पांडवों में श्रेष्ठ कौन, अर्जुन और द्रौपदी। इसकी कथा हम कल करेंगे, आज यहीं तक रहेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी, एकदम गोपियों तक ले चलेंगे, इसलिए कथा में सब लोग आएंगे, कथा सुनेंगे। 7 बजे ही आरंभ हो जाएगी और 8:15 तक
राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा I'm